أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ساتواں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ المائدہ ہی چل رہی ہے. آج جس تاریخی واقعے کا بیان میں آپ کے سامنے کروں گی وہ بہت مشہور ہے, ہم سکول میں وہ پڑھتے ہیں. یہ مکی زندگی میں جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ تشریف لے گئے تھے, اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, جس کو انگلش میں نیگس کے نام سے یاد کرتے ہیں, حبشہ کی سلطنت جو تھی وہ عرب جزیرہ عرب کا ہی حصہ تھی اور وہاں پر نصرانی رہتے تھے, نصارہ کی کافی بڑی حکومت تھی وہاں پر. اس واقعے کا ریفرنس, شان نزول تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس واقعے کے وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں, لیکن ریفرنس جو ہے یہ اس واقعے کی طرف ہے جب نجاشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت گئی تھی اور وہاں پر صحابہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی ان کے سامنے, اور وہ سورہ مریم سن کے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں, وہ رونا شروع ہو گئے, اور انہوں نے اس وقت شہادت دی تھی کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں اور یہ شہادت دیتا ہوں کہ تمہارا پیغمبر جو ہے یہ سچا پیغمبر ہے. روایات سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ نجاشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک مسلمان کی طرح یاد کیا ہے, اور جب وہ اس کی وفات ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی. یہ روایات میں ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے ثقہ روایت پتہ ہے یا مجھے صحیح حدیث پتہ ہے, لیکن روایات میں یہ ہے کہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ میں پڑھی گئی تھی. تو اس واقعے کی طرف یہ ریفرنس ہے, اور اس سے پہلے والے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ اہل کتاب میں سے بھی جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے اجر پھر اللہ کے پاس ہیں اور ان کو اچھے اجر ملنے والے ہیں. تو یہ یعنی کہ اہل کتاب کے اوپر ہم, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ہم وہ تکفیری ایٹیٹیوڈ جو ہے ہمارا کہ یہ کافر ہے, اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. کسی کے دل کا ایمان پر رکھنا اور دل کے ایمان کی جانچ کرنا یہ اللہ کا کام ہے, تو اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کبھی نہ کریں, اور خاص طور پہ کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اسلام سے خارج ہے یہ بہت سخت بات ہے, اور کسی مومن کو یہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں تک کہ اس ملک کا حاکم یا اس ملک کی عدالت یہ کہہ دے, اس ملک کے حکام یہ کہہ دیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کسی کو اکیلا پکڑ کے اس کے اوپر ایک تکفیری فتویٰ لگانا جیسا بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں عام ہے یہ بہت ہی سخت ناپسندیدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا, اور جب, سَمِعُوا, وہ سنتے ہیں, سمع, سننا, ما انزل الی الرسول, جو نازل کیا گیا رسول کی طرف, ترا, تو دیکھے, اعینہم, ان کی آنکھیں, تفیض, فا یا ذوات, فیض حاصل کرنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا فیض حاصل کرنا, اس فاز جو ہے فاز اس کی روٹ ہے, اور اس کا لغوی مطلب ہے پھوٹ پڑنا, کوئی چشمہ جیسے پھوٹ پڑنا یا آنکھیں پھوٹ پڑنا, یا ایک جگہ پر کوئی چیز جمع ہو اور وہ ایک دم سے اتنی بھر جائے کہ وہ وہاں سے پھوٹ پڑے تو اس کو فاز کہتے ہیں, یا جیسے ہم اردو میں فیض کہتے ہیں. ترا اعینہم, تو دیکھے کہ ان کی آنکھیں, تفیض, بہہ پڑتی ہیں, من الدمع, آنسوؤں سے, یعنی وہ آنسو ان کی آنکھوں سے ابل پڑتے ہیں, مما, اس کی وجہ سے, عرفو, جو انہوں نے پہچان لیا, من الحق, حق بات کو, یقولون, وہ کہتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, آمنا, ہم ایمان لائے, فاکتبنا, پس ہمیں لکھ لے, مع الشاہدین, گواہوں میں. یہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, یہ شہادت ہے, اور نجاشی نے اس وقت سورہ مریم کی آیات سن کر یہی شہادت دی تھی. وما لنا, اور ہمیں کیا ہے, لا نؤمنو, کہ ہم ایمان نہ لائیں, باللہ, اللہ پر, وما جاءنا, اور جو ہمارے پاس آیا, من الحق, حق بات سے, ونطمعو اور ہم تمع رکھتے ہیں، ان یدخلنا یہ کہ ہمیں داخل کرے ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین ایک نیک قوم کے ساتھ، یعنی اللہ ہمارا حساب نیکوکاروں کے ساتھ کرے. فاصابہم اللہ پس ان کو دیے اللہ نے، بما قالو اس بات کے بدلے میں، ان کے قول کے بدلے میں. دیکھیں یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا اب اس میں کہ انہوں نے ایک بات کی کہ ہم ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پاس جو حق آ گیا ہے ہم کیوں نہ اس پہ ایمان لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں، ہم تمع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیکوکاروں کے ساتھ داخل کرے گا. فاصابہم اللہ پس ان کو دیے اللہ نے، بما قالو اس بات کے بدلے میں، جنات تجری من تحتها الانہار وہ باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک اور یہی جزاء المحسنین جزا ہے، تحفہ ہے، انعام ہے محسنوں کا، نیکوکاروں کا. والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جو دوزخ کے ساتھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تحرموا نہ تم حرام ٹھہراؤ، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ جو حلال کی ہیں اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ ہی تم حد سے آگے بڑھو. اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو ہم کیسے حرام کرتے ہیں اپنے اوپر؟ دیکھیں یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ فتح مکہ ہوئی ہے اور وہاں پر یہ داخل ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ مسلمانوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوئی تھی، جو یعنی جو فاتح قوم تھی اس میں ایک کنفیوژن یہ پیدا ہوئی کہ ہم تو کفار کی یہ سلطنت ہے جو ہم ان سے لے رہے ہیں، اب یہاں پہ ہمارا بول بالا ہوگا، تو جو کفار کے طریقے ہیں وہ تو ان کو ہم نے سب کا سب ابولش کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال تھا فتح مکہ کے وقت، اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے روایات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں جتنے بت تھے وہ سارے توڑے، اور یہ کہا کہ جو جتنے سود ہیں یہ سب معاف ہیں، اور جتنے خون ہیں یہ سب معاف ہیں، یعنی باقاعدہ زمانۂ جاہلیت کا اور جو مشرکوں کا اور مسلمانوں کے آپس میں معاملے تھے ان سب کو اس وقت حل کیا گیا ہے، ان سب کا اس وقت تسلی بخش جواب دیا گیا ہے، تاکہ یہ سلطنت جو ہے یہ ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ اور ایک کلین سلیٹ کے ساتھ وہاں قائم ہو سکے. تو اب بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اسلام میں جن کی اجازت تھی، اور لیکن وہ چیزیں مشرک بھی کرتے تھے، جیسے کعبہ کا طواف، جیسے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، جیسے کعبہ کے سامنے سجدہ کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں کہیں تم ان کو حرام نہ ٹھہرا دینا، کیونکہ مشرک یہ کام کرتے ہیں. یہ بہت گہری بات ہے اور بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. پھر جو مشرک کھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں تمہارے لیے اب حرام ہو گئی ہیں کیونکہ وہ مشرک کھاتے ہیں. ہاں جو حرام ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، لیکن وہ بہت سی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو تمہارے لیے بھی حلال ہیں. ہاں حد سے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے جی. اب فی زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو بیف نہیں کھاتی، بڑا گوشت نہیں کھاتی. اب کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بڑے گوشت سے کراہت کرنا اور اسے یکسر بالکل حرام کر دینا اپنے اوپر، یہ قرآن کے منافی ہے. اب ایسے لوگ ہم جانتے ہیں جو ویجیٹیرین بن جاتے ہیں. اچھا ویجیٹیرین آپ خود بن جائیں کوئی بات نہیں، لیکن اپنا ویجیٹیرین پن جو ہے، اپنا جو ویجیٹیرینزم ہے، یہ باقی لوگوں کو نہ بیچیں کہ آپ ان کے سامنے بیٹھ کے گوشت کے اور جانوروں کے اوپر ہونے والے ظلم کے نقصانات گنواتے ہیں، اور باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ حلال گوشت سے اور حلال چیزیں، حلال خوراک سے رک جائیں. یہ قرآن کے منافی ہے. آپ خود جو کریں ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک حلال چیز کو حرام نہ کہیں. ان اللہ بے شک اللہ، لا يحب المعتدین وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. وکلوا مما رزقکم اللہ اور کھاؤ جو تمہیں رزق دیا ہے اللہ نے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ. دیکھیں حلال اور پاکیزہ دو الگ چیزیں ہیں. پاکیزہ چیز وہ ہے جو پاکیزہ طریقے سے حاصل کی جائے، جس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو، اس کے بعد وہ چیز فزیکلی پاک ستھری ہو، گندی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں آلائشیں نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو. حلالاً طیباً واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی وہ جو انتم بہی مؤمنون جس پہ تم ایمان لاتے ہو، لا یؤاخذکم اللہ، یہ آگے جو آیت آ رہی ہے یہ اس سورت کا ایک اور امتیاز ہے کہ اس میں جھوٹی قسم کا کفارہ بتایا گیا ہے، تو غور سے سنیے، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ، باللغو فی ایمانکم، ایک لغو اور بیہودہ قسم جو تم نے کھا لی ہے، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے، پکڑتا ہے تمہیں، بما عقدتم، جو مضبوط باندھا ہے، الایمان، جو تم نے ایک مضبوط قسم کھائی ہے، فکفارتن، اب جیسے اللہ کے نام کی قسم کھا لی ہے یا کوئی کسی چیز کو پکا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور پھر نہیں کر سکے، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ اطعام، کھانا کھلانا ہے، عشرت مساکین، 10 محتاجوں کو، من اوسط، اس درجے کا کھانا، ما تطعمون، جو تم طعام کرتے ہو، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، او تحریر، یا آزاد کرنا ہے، رقبہ، ایک گردن، یہ قسم کا کفارہ ہے، ایک قسم یا جیسے منت مانی ہے اور پوری نہیں کی، یا نظر مانی ہے اور پوری نہیں کی، قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام کروں گا لیکن پھر نہیں کیا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو کفارہ کیا ہے کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ویسا ہی کھانا، دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اوسط درجے کا، اس کا مطلب ہے ایک تو مسلمانوں کو اوسط درجے کا کھانا کھانا چاہیے، بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا اور کوالٹی کا اور برانڈوں کا اور بڑا ہی اسپیشل اور بڑا ہی رچ کھانا جو ہے، یہ قرآن کی روح سے اور اللہ کے ہاں ناپسند ہے۔ اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اور مسکینوں کو وہی کھلانا ہے جیسا گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کے لباس ہیں، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد، پس جو یہ نہ پائے، کیونکہ اس کی شان نزول میں ایک صحابی ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک قسم کھائی تھی جو مجھ سے ٹوٹ گئی ہے، پوری نہیں ہوئی، تو میں کیا کروں؟ تو جس انہوں نے کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا لباس پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر جس کو ومن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارت، یہ کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسم کا، اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھاؤ، پکی قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنے احکامات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب زبردست حکم آگے آ رہا ہے، یہ قسم کا کفارہ میں نے آپ کو پڑھا دیا، قرآن میں قسم کا کفارہ کیا ہے، قسم کو کتنا سیریسلی لینا ہے، اور اگر کفارہ ادا کر رہے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلا کے، تو اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ایک تو مسکینوں کو وہ کھانا کھلانا ہے جو خود کھاتے ہیں، اور دوسری یہ بات کہ قرآن کی روح سے بڑا ہی یعنی کہ لذیذ اور قیمتی اور مرغن غذائیں اور ایر دسترخوان بھرا ہوا قرآن کی روح سے یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اوسط درجے کا کھانا، ایوریج، ایوریج کھانا، بلو ایوریج نہیں کہا، روکھی سوکھی کھانے کو نہیں کہا، دیکھیں، اور یہ تو اب ہم سب کو پتہ ہے کہ اوسط درجے سے زیادہ کھانے کے کیا نتائج ہوتے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماری ہے، سٹریس ہے، موٹاپا ہے، پوری دنیا کو موٹاپے کی وبا لاگو ہوئی بھی ہے، لگی ہوئی ہے پوری دنیا کو۔ تو ظاہر ہے کھانا تو جتنا بھی اوسط درجے کا ہو اور جتنا تھوڑا ہو، وہ اتنی نعمت ہے، وہ اتنا اچھا ہے۔ اب تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع ہو گئی ہے، لوگ دن میں 16 سے 18 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، اور وہ ریسرچ کے مطابق اس عمل سے سٹیم سیلز پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی عمر بڑھتی ہے، اور جگر کا فنکشن ٹھیک ہوتا ہے، اور دماغ کا، اور آنکھوں کا، اور سکن اچھی ہوتی ہے، واللہ عالم ہر چیز، اب تو بہت کچھ یہ کھانے کے اوپر جو ریسرچیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک قسم کے کفارے سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلی ہیں۔ اب آگے جو حکم آ رہا ہے، یہ بھی اس صورت کا ایک امتیاز ہے، یہ وہ فائنل حکم ہے جو نشے کی حرمت میں، اور جوئے और पांसे की हुरमत में नाजिल हुआ है। इससे पहले वार्निंग यानी सूरह अल-बकरा में था कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, इसमें कुछ फ़ायदे हैं लेकिन ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, बुरी चीज़ें हैं। फिर सूरह निसा में आ गई आयत के वला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। हाँ, तुमने नमाज के करीब नहीं जाना जब तुम सुकरा या सुकरात जब तुम नशे में हो। ये शराब की हुरमत नहीं है, याद रखें, ये नशे की हुरमत है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, हत्ता कि अंग्रेज़ हमसे पूछते हैं, जो जेन्युइनली पूछ रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि यू नो अल्कोहल इज़ हराम। नहीं, उनको ये समझाएं, इट इज़ नॉट ओनली अल्कोहल, इट इज़ माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स। जो चीज़ इंसान की सोच को ख़राब करे, खमर जो है, खा मीम रा, खमर किस चीज़ को कहते हैं? उर्दू का एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, खुमार, ठीक है ना जी, खुमार नशे को कहते हैं। खमर जो है अरबी में, बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है ये दुपट्टे को कहते हैं, ठीक है। बेखमर हिन्ना, ये हुक्म आया है पर्दे में कि वो औरतें अपने सीनों पर, अपनी ओढ़नियाँ, अपने दुपट्टे सीनों पर फैला लें। तो खमर जो है ये एक चादर या दुपट्टे को कहते हैं जो सीने को कवर करता है। तो खुमार जो है ये वो चीज़ है जो इंसान की अक़ल को ढांप लेता है, जैसे एक दुपट्टा हम किसी चीज़ पर डाल के उसे छुपा देते हैं। खुमार इस्लाम में नशा हराम है। सिर्फ शराब या अल्कोहल नहीं हराम, जो भी नशे की चीज़ है, चाहे वो चर्स है, चाहे वो हेरोइन है, चाहे वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो इंसान की सोच को बदलती हैं, हर ऐसी चीज़ इंसान के लिए हमारे दीन में हराम है। तो हुक्म आता है आयत नंबर 90 सूरह अल-माईदा, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हुक्म है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और देखें शराब की हुरमत कितनी लेट आ रही है, ये फतेह मक्का के करीब करीब कहीं मुकम्मल, हालांकि अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, शराब की हुरमत जो है ये वाला हुक्म ये मदीना में नाजिल हुआ था, क्योंकि हमें रवायात से पता है कि जब ये हुक्म आया था तो सहाबा ने बहुत कसीर मकदार में शराब जो है वो बर्तन तोड़ के गलियों में बहा दी थी, और कितने दिनों तक मदीना की हवा में नबीस, जो शराब वो अंगूर की पीते थे, उसकी महक थी, कितने अरसे तक उसमें वो अल्कोहल की वो स्मेल थी वहाँ पर, वो फ्रेग्रेंस या वो जो भी उनको महसूस होती रही हवा में, क्योंकि बहुत कसीर मकदार में बहाई गई थी शराब। तो ये मदनी आयत है, सूरत पूरी मदनी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सॉरी मक्की के, ये फतेह मक्का के मौके पे इसकी ज़्यादातर आयात नाजिल हुई हैं, ये जो आयत है ये मदनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमा, मैंने आपको पढ़ाया है कि ये एक एक्सेप्शन का कलमा है कि इसके सिवा नहीं है, बस यही बात है। इन्नमल खमरो, इसके सिवा नहीं है कि नशा, वल मैसरो, दूसरा लफ्ज़ आ रहा है मैसर। मैसर क्या चीज़ है, ये भी अक्सर लोग देखें, आप तर्जुमों में अभी अगर देख रहे हैं ना तो वहाँ जुआ लिखा होगा। मैसर जो है इसका रूट है या सीन रा, यसरा, यसर का मतलब है आसानी। इन नमल उसर युसरा, हम पढ़ते हैं ना, सख्ती के साथ आसानी है, कुशादगी है। मैसर वो पैसा है जो बग़ैर मेहनत के हाथ आ जाए, जिसमें सबसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जुआ, बिल्कुल जुआ है, ठीक है ना, जाके बैठें एक बाजी खेलें और पैसे लेके उठ जाएं, मैसर है, ना कोई मेहनत की, ना कोई मजदूरी की, ना कोई दिमाग खर्च हुआ और पैसा जीत के उठ गए वहाँ से। इस तरह लॉटरी भी मैसर है, इसी तरह प्राइज बॉन्ड्स भी मैसर हैं। 10 रुपए का बॉन्ड ख़रीदा, 1000 रुपए का इनाम निकल आया, ये मैसर है, ठीक है। 100 रुपए का टिकट ख़रीदा, वहाँ पे जाके तंबोला खेला, 1000 रुपए जीत के उठ गए वहाँ से, ये सब मैसर है और ये सब हराम है। इन्नमल खम्र, इसके सिवा नहीं है कि नशा, वल मैसर, वल अनसाब, नसब हुआ हुआ, एक चीज़ जो नसब होती है, तो ये बुत हैं, ठीक है। शरा की ज़बान में ये तस्वीर भी हैं, इंसानों की तस्वीरें, और मैं आपको पढ़ाने के उससे बता रही हूँ, मैं बहस के या अपनी तरफ से कोई फतवा देने की कोशिश नहीं कर रही, मैं आपको अपने मशहूर मुफस्सिरीन की इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ कि चूंकि बुत भी एक स्टिल तस्वीर है, तो जानदार तस्वीरें जो हैं उनको भी इस हुक्म में शामिल समझा जाता है। वल अज़लामो, और अज़लाम जो हैं ये पांसे हैं, जैसे किसी की फाल निकालना, जैसे जो डाइस जो होता है छक्का, जो जिसे हम लूडो खेलते हैं, वो फेंक के किसी की किस्मत का हाल बताना, चाय की पत्तियों से किसी की किस्मत का हाल बताना, ताश के पत्तों से किसी की किस्मत का हाल बताना, किसी का हाथ देख के या किसी का तारीख़ पैदाइश देख के कि ये आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा और आपकी ज़िंदगी में आगे क्या आने वाला है, ये चीज़ अल्लाह क्या कहता है, रिजसुन, ये नापाक है, ये गंदी चीज़ें हैं। क्यों गंदी चीज़ें? अब एक एक का मैं आपको बताती हूँ कि ये गंदा क्यों है। खमर नशा है, वो तो है ही गंदा, दिमाग को परा गंदा कर देता है। दिमाग, इंसान का दिमाग जब काम करना छोड़ दे तो वो उसको बुरे भले की तमीज़ नहीं रहती, तो वो तो रिज्स बन गया। मैसर क्यों रिज्स है? क्योंकि बग़ैर मेहनत के जो पैसा इंसान के हाथ आता है उसको उसकी कदर नहीं होती, और फिर वो पैसा वो जाके हराम उमूर पे खर्च करता है। आज जुआ खेल रहा है, कल जाके उस पैसे से जना करेगा, ठीक है जी। तो एक दूसरे, एक गंदा काम दूसरे को जन्म दे रहा है, ये रिज्स है, गंदगी है। बुत, बुत जो वो तो शिर्क है, तो रिज्स से भी कहीं ज़्यादा आगे, वो तो शिर्क है। और अनसाब जो है, मैंने दोबारा आपको बताया है कि रिज्स इसलिए कि एक दफ़ा जब जानदारों की तस्वीरों की आप मुआशरे में इजाज़त दे देते हैं, तो देखें मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि हम सब तस्वीरें लेते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, तस्वीरें पसंद करते हैं, हमें अपनी तस्वीरें भी पसंद हैं, हमारे बच्चों की भी, हमारे प्यारों की भी, ये सब अनसाब हैं। लेकिन ये कुरान का हुक्म जो है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। जहाँ पे जानदारों की तस्वीरें लेने की इजाज़त आ गई, वहाँ पे आप आज देखें इस दुनिया में जो फहाशी और पोर्नोग्राफी का एक बाज़ार गर्म है, जो नंगे लोगों की उरियानी की मंडियाँ खुली हुई हैं, उन सब की बुनियाद क्या है? इंसानी जिस्म की तस्वीरें है कि नहीं है? अब ये मैं बहस लंबी नहीं करना चाहती, इसके ऊपर सोचें ज़रूर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सोचने की दावत दे रही हूँ, क्योंकि हमारा दौरा है कि हम कुरान पे अमल कैसे करें। तो जो भी अमल हम करते हैं उसके बारे में हमें कुरान का हुक्म मालूम होना चाहिए, और जो भी हुक्म हमें मालूम है हमें उसकी दलील और तौजीह बिल्कुल साफ मालूम होनी चाहिए। इसीलिए अनसाब को हराम किया गया है, वल अज़लाम, और पांसे तो है ही हराम। अच्छा, अज़लाम में आखिर किसी को किस्मत का हाल बताने में क्या गंदगी है? देखें ये जो हमारे फाली बाबा होते हैं ना, बंगाली बाबा, किसी बांग्लादेश वालों को बुरा नहीं कह रही, बदकिस्मती से वो कहते हैं कि हम ये बंगाली बाबा है या ये कोई और, जैसे बस इसको जादू करना आता है या इसको मुस्तकबिल का हाल पता है। अक्सर वो लोग ये काम जो हैं ये जिनों से लेते हैं, और जिन जो हैं ये वो जिन होते हैं जिनको बड़े ही नजस और गंदे काम करके काबू किया जाता है। वो जिन किसी का काबू नहीं आते जब तक वो उनकी शराइत ना पूरी करे, और उन शराइत में से मैं आपको सिर्फ पहली शर्त बता देती हूँ, बाकी मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ कि मेरा अपना दिल ख़राब हो जाता है। उसमें पहली शर्त ये है कि आपने इतने इतने दिन ना तो वज़ू करना है ना नमाज पढ़नी है, हत्ता कि आपने इस्तिंजा भी नहीं करना, आपने उस गंदगी में और उस नजासत में रहना है इतने इतने दिन, तब आप एक जिन को काबू कर सकेंगे। तो ये चीज़, इससे ज़्यादा रिच चीज़ आपने कभी सुनी है? ये तो पहली शर्त मैंने आपको बताई है। तो ये सब जो है इंतहाई गंदे अमाल हैं, इंतहाई गंदगी पैदा करने वाले, मिन अमल शैतान, शैतान के काम है। जब शैतान तुम्हें ये काम करने का कहता है तो वो कैसे पाक हो सकता है? फज तनिबू हो, ये हुक्म है, फा पस, अज तनिबू, ये किस चीज़ से निकला है? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है ये, फा तो है पस, और आखिर में जो हो है वो है वो, बीच में जो लफ्ज़ है ना, आप उर्दू का एक लफ्ज़ जानते हैं इज्तनाब, और अरबी का जो रूट है इसकी वो है जीम नून बा, जनबा, अजनबी हो जाना एक चीज़ के लिए, एक चीज़ से बिल्कुल अलग हो जाना, जैसे वो आपके लिए अजनबी है। फज तनिबू हो, बस इन इन कामों से बचो, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफ्लिहून, फलाह पा जाओ। इन्नमा, इसके सिवा नहीं है, युरीदु शैतानु, चाहता है शैतान, अय्यूक़िआ, कि वो वाक़े कर दे, वो डाल दे, बैनकुमुल अदावता, तुम्हारे दरमियान दुश्मनी। तो इन गंदी चीज़ों के ज़रिए वो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी डालता है, वल बग़्ज़ा, और बोझ, फिल खम्र, नशे की चीज़ों में, वलमैसरे और आसानी से मिलने वाले पैसे की वजह से। वयसुद्दको, और वो तुम्हें रोके, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस सलात, और नमाज से। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज आ जाओगे? यानी दो मतलब हैं, क्या तुम इन गंदी चीज़ों से बाज आओगे, दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, क्या तुम शैतान की बात मान के अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से बाज आ जाओगे। वातीउल्लाह वातीउर्रसूल, और अल्लाह की अताअत करो और रसूल की, वह ज़रूर, और बचते रहो। फ़इन तवल्लैतुम, बस अगर तुम फिर जाओगे, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा, इस सिर्फ, अला रसूलना, हमारे रसूल के ज़िम्मे, अलबलागुल मुबीन, सिर्फ एक खुला पहुंचा देना है, वाज़ेह बयान पहुंचा देना है। लैसा अलल्लज़ीना आमनू, नहीं है ईमान वालों पर, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, जुनाहुन, कोई भी गुनाह, फ़ीमा, उसमें, जो त्वाइमू, वो खा चुके हैं। ये एक आम उमूमी माफ़ी का ऐलान है। इज़ा मत्तक़ौ, जब उन्होंने परहेज़ किया, व आमनू, और वो ईमान लाए, व अमिलु सवालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, सुम्मत तक़ौ, फिर वो उन्होंने तकवा इख्तियार किया, व आमनू, और ईमान लाए, सुम्मत तक़ौ, और फिर वो उन्होंने तकवा इख्तियार किया, व अहसनू, और उन्होंने एहसान किया। वल्लाहु, और अल्लाह, युहिब्बुल मुहसिनीन, दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आयत है। अल्लाह नहीं है ईमान वालों पर, और क्योंकि ईमान वाले भी क्या, या अल्लाह, हमारी भी तो एक ज़िंदगी है जिसमें हम काफिर थे। जैसे हमें पता है, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो हैंडसम और हसीन खूबसूरत सहाबी जिनकी शक्ल हज़रत जिब्रील बना के आते थे, यानी हज़रत जिब्रील उनकी शक्ल में आते थे जब वो इंसानी शक्ल में आते थे, तो ये सहाबी जो हैं, ये अपने कबीले के सरदार थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये ईमान कबूल करने आए हैं, तो सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये तो बड़ा जालिम आदमी है, इसने तो बड़े जुल्म किए हैं। और हज़रत दहिया जब आए हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उतार के उनको तोहफ़ा, उनको कहा है कि ये लो और इस पर बैठ जाओ। तो हज़रत दहिया ने उस जुब्बे को उठा के चूमा है, अपने माथे से लगाया, अपने सिर पर रखा, और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं ईमान कबूल करने आया हूँ, लेकिन आप ये जान लें कि मैंने 60 बच्चियों को ज़िंदा गाड़ा है ज़मीन में, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि मेरा कोई दामाद हो, और मैंने 70 कत्ल किए हैं, 70 खून मैंने किए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त, यानी एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह तुम्हें ये सब माफ़ कर देगा, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के बदले में। तो ये शान है एक मोमिन की। यहाँ पर अल्लाह ताला एक उमूमी माफ़ी का ऐलान कर रहा है। देखो, उन पर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उस उनको इस पर गुनाह नहीं है जो वो पहले खा चुके हैं। सूद खाया है, हराम खाया है, किसी का हक मारा है, पहले कर चुके हैं। किस शर्त पर? इज़ा मत तक़ौ, जब उन्होंने परहेज़ किया, फिर परहेज़ करना शुरू कर दिया। वह आमनों, और ईमान लाए, वह अमिलो सवालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए अपने ईमान के साथ। सुम्मत तक़ौ, फिर तकवा इख्तियार किया, अभी तक तकवा का लफ्ज़ नहीं आया था। वह आमनों, और उस तकवा के ज़रिए वो ईमान में मज़ीद आगे बढ़े। सुम्मत तक़ौ, फिर वो मज़ीद तकवा पर फाइज हुए, मज़ीद तकवा उन्हें नसीब हुआ। और जब एक दफ़ा ईमान लाए और नेक अमल किए और तकवा इख्तियार किया, तो ईमान बढ़ गया, फिर मज़ीद तकवा इख्तियार किया, तो वो एहसान के दर्जे पर फाइज हुए। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह दोस्त रखता है मुहसिनीन को। अल्लाह का दोस्त कौन नहीं बनना चाहता? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु, अलबत्ता ज़रूर तुम्हें अल्लाह आजमाएगा, बिशैइन, किसी चीज़ से, मिनस्सैदी। ये सूरत चूंकि एंड की तरफ बढ़ रही है ना, तो वापस अपने शुरू वाले सब्जेक्ट में गई है। कुरान की बहुत सी सूरतें सर्कुलर या साइक्लिक स्ट्रक्चर रखती हैं, जहाँ पे एंड में उस चीज़ का जिक्र दोबारा होता है जो शुरू में हुआ था। जैसे सूरह निसा में कलाला का मसला एंड में दोबारा आया है, चूँकि वो शुरू में आया था और एंड में दोबारा वही मसला आया है। तो ये है कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा शिकार में। सूरत भी शिकार से शुरू हुई थी अगर आपको याद हो। तनालुहू, उस तक पहुँचते हैं, ए दी कुम, तुम्हारे हाथ, वरिमा हुकुम, और तुम्हारे नेज़े, लयालमल्लाहु, ताकि अल्लाह मालूम करे मैं यखाफुहु बिल गैब, कौन उसे डरता है बिन देखे। एहराम की हालत में शिकार की मुमानियत थी सूरत के शुरू में, यहाँ पे वही सब्जेक्ट बताया जा रहा है कि अल्लाह देखे क्योंकि तुम अकेले होते हो एहराम की हालत में। अगर तुम अकेले हो और तुम्हें सामने कोई शिकार आ जाए तो कितना तकवा है तुम्हारा कि तुम ये सोचो कि अल्लाह तो देख रहा है और मेरा एहराम टूट जाएगा अगर मैंने ये काम किया। फमन तदा बाद अजालिक, बस जिसने ज्यादती की इसके बाद, फलहू अजाबुन अलीम, तो उसके लिए एक दर्दनाक अजाब है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, ला तक्तुलुस्सैद, ना तुम कत्ल करो शिकार को, व अंतुम हुरूम, जबकि तुम हालत एहराम में हो। वही सब्जेक्ट आ गया। वमन कत्लहू मिनकुम, और जो उस शिकार को मारेगा तुम में से, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फजज़ाउन, तो बदला, मिस्लु मा कतला, उसके बराबर है जो उसने मारा है, मिनन दामे, मवेशी में से, जैसे कोई बड़ा चौपाया मारा है हालत एहराम में, तो फिर उसका कफारा भी एक और मवेशी को ज़िबह करके देना है। यह कुमु बिही, फैसला करें उसका, ज़वा अदलिन मिनकुम, दो मोतबर लोग, दो आदिल लोग तुम में से, हदियन, एक नियाज, बालिगल काबते, जो पहुंचाएगा वो काबे को, और कफारतुन, या कफारा उसका, ताम मिस्कीन, गरीबों को, एक गरीब को खाना खिलाना है, और अदलो, या बराबर है जालिक इस चीज़ के, सियामन, रोज़े। अब जितने रोज़े रखना है उसके तादाद नहीं बताई गई, शरा में है कि 3 रोज़े रखे, ले यजूगा, ताकि वो चखे, वबाल अम्रिही, अपने काम की सज़ा, वबाल अपने इस काम का। तो देखिए एहराम की एक शर्त है जो इसने तोड़ी है और उसके नतीजे में उम्रा या हज उसका ज़ाया हो रहा है, तो जाहिर है कि फिर वबाल तो है उसका और उसकी सज़ा है और उसका फ़दिया है जो उसने देना है। अफल्लाहु, अल्लाह ने माफ़ किया है, अम्मा सलफ, जो पहले हो चुका है। अब जबकि कफ़ारा बयान हो गया है तो फिर इसको फॉलो करना है। वमन आदा, और जिसने दोबारा किया, फ़यन्तक़िमुल्लाहु मिन्हु, तो अल्लाह बदला लेगा फिर उससे। वल्लाहु, और अल्लाह, अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, ज़बरदस्त है और बदला लेने वाला है। उहिल्ल लकुम सैदुल बहर, हलाल है तुम्हारे लिए दरिया का शिकार, व तआमुहु, और उसका खाना, मताअल लकुम, एक फ़ायदा है तुम्हारे लिए, वलिस सय्यारते, और मुसाफरों के लिए, व हुर्रिमा अलैकुम, और हराम किया गया है तुम पर, सैदुल बर, जंगल का शिकार, मा दुम तुम हुरुमा, जब तक तुम हालत एहराम में हो। तो समंदर की चीज़ों में भी याद रखें कि जैसे मछली है या प्रॉन्स हैं जिसको टिड्डी कहते हैं, वो ये हलाल हैं। जो गोश्त खाने वाली मछलियां हैं जैसे शार्क है ये, या वेल है, ये हराम है, ये फिर भी हराम है। ठीक है जी। वत्तकुल्लाह, और तकवा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से, अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, वो ज़ात जिसकी तरफ तुम वापस जमा किए जाओगे। जअलल्लाहुल काबता, बनाया है अल्लाह ने काबे को, अलबैत अलहराम, एक एहतराम वाला घर, क़ियामल लिन्नास, क़याम की जगह लोगों के लिए, वशहर अलहरामा, और हुरमत वाले महीने, वलहदिया, और क़ुरबानी, वलकलाइद, और पट्टे पड़े हुए जानवर, ये सारी चीज़ें बाइस एहतराम हैं। सूरत के शुरू में ये गुजर चुकी हैं और ये रसूमात मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अहद जाहिलिया से चल रही थी। इन रसूमात को पामाल करने की मुसलमानों को इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि कल्चरल शॉक जो है वो एक सल्तनत को डिस्टेबलाइज कर सकता है। कल्चरल शॉक अवाम को नहीं देना, अवाम को ये कहना है कि आप जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे, हाँ पहले आप बुत के लिए करते थे, अब आप मुसलमान हो गए हैं, वही चीज़ असल में अल्लाह के लिए की जानी है। ज़ालिका लितअलमु, ये इसलिए कि तुम जान लो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, यअलमु, वो जानता है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ, जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, बिकुल शैइन अलीम, हर चीज़ का जानने वाला है। एलमु, अच्छी तरह जान लो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख्त ताकुब करने वाला है, छोड़ने वाला नहीं है, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, बार बार रहम करने वाला है। मा अलर रसूल, नहीं है रसूल पर, इल्लल बलाग, चौथी दफ़ा ये हुक्म इस सूरत में आया है क्योंकि इस सूरत के साथ आप समझें, यानी कि तरतीबे नुज़ूल में इस सूरत के बाद मज़ीद वही नहीं थी। तो बार बार अल्लाह ताला ने ये जताया है कि हमारा रसूल, हमारा भेजा हुआ जो भी कुरान को ट्रांसमिट कर रहा है उसके ज़िम्मे सिर्फ पहुंचा देना है, ठीक है। वल्लाहु यालम, और अल्लाह जानता है, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, वमा तक्तुमून, और जो कुछ तुम छुपाते हो। जो कुरान पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी इसमें बहुत बड़ा सबक है। जिस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो रहा था, जिस पर वही आ रही थी, जिसने जिब्रील को अपनी आंखों से देखा हुआ था, उसके लिए अल्लाह कह रहा है कि इसके ज़िम्मे सिर्फ पहुंचा देना है। इसने ये किसी के दिल में ईमान नहीं डाल सकता, हाँ इसके ज़िम्मे पहुंचा देना है। ये वो ज़ात है जिसको देख कर लोग ईमान लाते थे। तो फिर हम और आप जो कुरान के पढ़ाने वाले हैं और कुरान को सीखने वाले हैं, हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये एक बुज़ुर्ग का कौल है कि जिसको कुरान के आईने में अपने अलावा कुछ नज़र आ गया तो फिर उसका कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुरान सिर्फ हमसे बात कर रहा है, ये कुरान सिर्फ हमें समझा रहा है, ये हमारे लिए है। इसके आईने में हमने अपने दिल को देखना है, अपने किरदार की कसाफत को और गंदगी को दूर करना है। किसी को ना जज करें, किसी के ऊपर फतवा ना दें, किसी के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपनी फिक्र करें, ठीक है जी। कुल, फरमा दीजिए, ला यस्तविल खबीस, नहीं बराबर ना पाक व तैयब और पाक, साफ फर्क है, ये ना पाक है और वो पाक है। वलव अजबका, चाहे तुम्हें बहुत अच्छा लगे, बहुत ही तुम्हें भाए कसरत हो, एक कसरत अलखबीस, गंदगी की, गंदगी की कसरत किसी को कैसे भा सकती है? ये सवाल बहुत ज़्यादा मैंने सोचा है। और इंसान का नफ्स जो है वो उसको गंदगी बड़ा खूबसूरत करके दिखाता है। इस चीज़ को ज़ुय्यिना लिन्नास से लोगों के लिए खूबसूरत कर दी गई हैं, आरास्ता कर दी गई हैं, ठीक है। ये चीज़ें, उनकी शहवात, उनकी ख्वाहिशात, उनके लिए खजाने, माल, हुसन, दुनियावी रंगारंगी किस कदर हमें खूबसूरत लगती है। कितने आराम से हम जब स्क्रीन पे एक फिल्म देख रहे होते हैं और उन फिल्मों में हम ऐसे मनाजिर देखते हैं जो अगर हमें कोई वैसी बातों में बताए कि वो उन्होंने ऐसा काम किया, उस मर्द और औरत ने ऐसा काम किया, तो हम कहेंगे अस्तग़फिरुल्लाह, ये तो जना है। लेकिन एक हॉलीवुड की या बॉलीवुड की कोई फिल्म देखते हुए हम हर किसी ये नहीं सोचते, हम कहते, हम हीरो हीरोइन के हुस्न के हिसार में ऐसे फंसे हुए होते हैं कि वो गंदगी और वो खबासत हमें इंतहाई खूबसूरत नज़र आती है, बहुत बड़ा आर्ट नज़र आता है हमें, वो हम उसकी बाकायदा तारीफ़ें करते हैं। तो ये वो नापाकी की कसरत है, जब हमारा नफ्स हम पे गालिब होता है तो हमें वो चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं। फ़त्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो। सूरत जब ख़त्म होगी इंशाल्लाह तो मैं आपको तकवा का लेक्चर भेजूंगी। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। सूरत इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगले दर्स में ख़त्म हो जाएगी। ये 100 नंबर आयत हमने आज यहाँ तक पढ़ा है, और इसके बाद मैं आपको तकवा का एक सेशन भेजूंगी जो आपने अलग से सुनना है। आपको महसूस हुआ होगा कि जो जो दुरूस हैं, जो हमारा सबक है, इसका दौरानिया ज़्यादा हो गया। मैंने 10 मिनट बढ़ाया है, पहले आधा घंटा होता था, अब ये 40 मिनट है। तो कुछ मैंने इसका दौरानिया बढ़ाया है क्योंकि हम कोशिश, हमारी दुआ है और हमारा हमारी मेहनत अल्लाह कबूल कर ले, हम चाहते हैं कि हम रमज़ान में खैर से कुरान मजीद की तकमील करें। तो मैं, ऑल्दो मैंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैं समझा अभी भी उतना ही रही हूँ जितना मैं आपको पहले समझा रही थी, लेकिन एक तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम तकरीबन सारे मेजर अल्फाज कुरान के पढ़ चुके हैं, रूट्स हम पढ़ चुके हैं। अगर मुश्किल रूट्स होती हैं तो मैं वहाँ रुक के आपको समझा देती हूँ, और फिर कुरान पे हम अमल कैसे करें वो पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, मैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। लेकिन दौरानिया बढ़ गया है और ये दौरानिया आहिस्ता आहिस्ता इससे भी बढ़ेगा। मेरा मशवरा आपको ये है, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि कुरान के लिए एक टाइम मुख्तस करें, कॉपी पेंसिल ले के बैठा करें, नोट्स बनाया करें, कुरान सामने रखें और कुरान को देख कर ये सुने आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हम सब को कुरान को सीख कर उस पर अमल करने वाला और उस पर अमल करके उसको आगे पहुंचाने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन।